बेटों के एकमात्र कृष्ण के चरणों में प्रीति होना ही यही सबका कारण है। समझ सके सत्कर्म डाल रहे हैं, तप कर रहे हैं, गृहस्थ घर चला रहे हैं। जब वो चले गए तो भाइयों ने देखा कि पड़ेगा तो नहीं, जाने पर छोड़ो, अब ये कहीं मजदूरी कर लेते, दूसरों के घर में देखते थे सबका जीवन निर्वाह सब कुछ कर लेते हैं, तो कोई अपने घर का काम करा लेता कर लेते, वो कुछ दे देता मान अपमान कुछ भी नहीं, दिन रात अपत रखने की बात, उनको कोई अपमान करता कुछ करता वो कुछ नहीं। अरे ये तो मूर्ख है, पागल है, आत्मा पागल नहीं है, आत्मज्ञान होने पर इस तरीके का ध्यान नहीं रहा। हम लोग भजन करने बैठे हैं मान अपमान हो जाता है, गुरु जब भी कुछ ज्ञान दिया शिष्य करता जा अच्छा प्रणाम भी नहीं किया आ गई चल पड़े, थोड़ा सा मान अपमान हो जाएगा, हम अपना मान नष्ट करने के लिए आए थे, भजन नहीं समझता है जिसको करते हैं। जब तक ये मान रहेगा अपमान रहेगा सुख और दुख की इच्छा रहेगी तब तक अभी भजन में प्रवेश नहीं है। इस चीज को समझेंगे भागवतार कर रहा है, इसको हमको लेना है, जहां भगवत भक्ति हमको मिलेगी उस स्थान पर हम मान अपमान सब कुछ छोड़ सकते हैं। तो वह ऐसा ही समय लगे लोग समझ नहीं सके, भाइयों ने देखा देखिए तो बाहर में क्यों नौकरी करेगा, अपने घर में लगा दिया भाई तुमको हम खिलाएंगे पिलाएंगे, तुम घर से बाहर हमारी बेइज्जती होगी, बस वो लोग चोकर चोकर से चोकर है आधा करने के बाद में चोकर चने का सूटी और सब चीजें फल ये सभी साथ लेकर के सिद्ध करके जैसे गाय बैलों को दे देते हैं इसको दे देते वो पूरा लेकर के शरीर की वैसा कपड़े की कोई जरूरत नहीं, कपड़े मैले चले हुए हैं जब जब अभी उसमें मैल से नहीं लग सकती है, स्नान नहीं कर रहे हैं शरीर पर भी मैल नहीं, कोई चिंता नहीं स्नान ही नहीं कर रहे, कोई उनको बाधा नहीं है। अच्छा तो खेत पर बैठो पक्षियों को हटाओ हिरणों से खेत को बचाओ यहीं पर, उनकी पत्नियां भी खूब ताना करती इस पर बता तरह तरह की बातें करती, ऐसा करो फल लगा दो ये करो वो करो, शरीर जब है तब तो वो कर नहीं रहा है, किंतु देहा विमान उनको खेत पर बैठा दिया, एक दिन खेत पर बैठे थे, इतने में कह रहे तो का सरकार अपने पुत्र की लालसा जिसे पुत्र हो जाए इसलिए नर बलि देना चाहता था, जिसके समस्त अंग प्रत्यंग बड़े सुंदर, अरे एक आदमी को पकड़ भी लाया किंतु रात में अंधेरे को देख सके और वो कहीं उसी में भाग गया, बड़ा उसको जाओ आदमी नहीं मिला, देखा जैसे रास्ते के बेड़ पर विराजन के रूप में बैठे हुए खेत की रखवाली कर रहे हैं, विराजन पर मैंने दिखलाने के लिए अब सब चिंतन कर रहे हैं, इधर में देखते हैं उधर इधर में देखते हैं, उन लोगों ने देखा जैसे ये बड़ा अच्छा नर्मन के लिए पशु मिल गया, सब लक्षण बड़ा बहुवर्ण का शरीर सब लक्षण है मालूम होता है ये ब्राह्मण भी है, लेकिन हाथ पकड़ करके ले चलने लगे तो पशु दिखाती है, देवी के मंदिर में ले गए कुरुक्षेत्र की बात, बस वहां पर देवी के सामने काली जी के सामने लेकर के इनको बैठा दिया तो बैठ गए, इनको स्नान कराया तो स्नान कर दिया, मना नहीं कराया अपने स्नान नहीं करने वाले थे स्नान करा दिया, स्नान कर दिया बाल बाल सब ठीक ठाक करके ठीक कर दिया, गले में कुछ मारा देवी तैयारी हो रही है, लाल कपड़े बांध दिए देवी के सामने काली से बैठ करके ऐसे सिर में क्या करो हाथ जोड़ करके प्रणाम करो, तो वैसा ही कर कहीं भी मृत्यु का मैं नहीं, यदि कर्म फल हमारा ऐसा होगा मारने का तो कोई बचा नहीं सकेगा, और कर्म फल नहीं होगा तो कोई हमारा बाल बांधा नहीं कर सकता है, भगवान का भजन करने वाला ऐसा होता है, देखो क्या करते भगवान भजन के लिए ऐसे प्रस्तुत हो कहीं, और यदि कोई कुछ हो जाए तो करेंगे हम डर के मारे, तो भगवान चाहते का गया शरणागति का मिले, जरा समझो हम कितने पानी में हैं, जैसा करा दिया वैसा कर दिया, तो आप बंद करके नीचे देखो तेजी से बाहर नहीं जा, पहना खड़ या पता होता है بند کرنے کے لیے رہتا ہے, بس اس کو لگا رہے ہیں کھینچ رہے تیز کر رہے ہیں. یہ دیکھو تو یہ نراستی بھگوان کے سب لوگ میں آتے دہن کرنے والے جن کو دھوپ دھوپ مان اپمان کا کچھ بھی پتا نہیں, ایسے یہ مہاپور اور اس کو بلی دینے کی نیت سے لے آیا ہے اور بلی دینے خون پور خون کھول تھا اور وہ کی پھٹی. وہ لوگ کھڑ ہاتھ میں لے کر کے مارنے والے تھے, اس چلے نے اس کو زور سے گردن کیا ہاتھ سے بول کر چھٹ گیا اور وہاں سے اتر کر کے نیچے آ کر کے کھڑ کو اٹھا لیا سب کو جتنے وہاں پر تھے ڈکیت لوگ سب کو ختم کر دیا مار کر کے کاٹ. اور مونڈ والا تو اپنے پیروں سے کھیلنے لگے, کبھی چلاتی کبھی کچھ کرتی, روٹی سے ان کا پان کرنے لگے. بڑا اس میں ان کا ایسا ہو رہا تھا کہ مانو برہمانڈ کو لے کر دیں ہاتھ جوڑ کر کے پیچھے وہ شانت ہو گئی اور سب کو چھوڑ کر کے ہاتھ جوڑ کر کے ان کے سامنے میں کھڑی ہو گئی. مہاپروش ان لوگوں نے آپ کے لیے مارنے کے لیے کرتی اور آپ ایک پگ بھی کیا سبھی نے اپنے لیے کچھ نہیں کیا, آپ کے اندر نہ برہمپتی ہے مانو بھگوان ہی دیوی کے روپ میں آ کر کے ان کا سنہار کر کے اپنے بخش کی رکھا ہے. ہوتا بھی ایسے ہی ہے بھگوان کا آرادھن کرنے والا ہے اس کو دوسرا کون تھام رہے گا, کوئی نہیں, وہ کرشن ہی. جیسے کتیانی کی پوجا کی کرشن کے لیے تو کرشن آ گئے, ایسے یہاں پر بھی ایسے ہی سمجھو ان کی جڑا مایا ہے چھایا مایا ہے, اس لیے مایا کے پتی سن جب چاہ رہے ہیں ان کے بخش کو کون مار سکتا ہے. اس لیے آپ لوگ بھی جو بھجن کا بھگوان کا بھجن کریں گے بھی ہوں گے, مرنا تو پڑے گا تو مرنا مرنا ضرور پڑے گا اور یعنی نہیں مرنا ہے تو نہیں مریں گے. اس وشے کو ٹھیک رکھیں گے, چت کو چنچل نہیں کرنا ہے. ہماری کوئی چیز جانے والی ہے تو چلی جائے گی اور بیچ بازار میں بھی جب گر جائے گا تھوڑی دیر کے بعد میں جائیں گے جیسے کہ تیسری پڑی ہے بیچ بازار میں چوک میں جہاں پر ہزاروں لاکھوں لوگ, اور گھر میں ایسی جس میں کوئی چیز بند کر دو وہ کیا ہوگا, جانا لے جانا ہوتا ہے انہیں زیادہ اتنی چنتا کرنے کی کیا ضرورت ہے. اس لیے بھجن کرنے کے لیے یہ اپاخیان جو ہے رام وار ہے, اس لیے بھجن کرنے والے ویکتی کو ایسا ہی گرہستوں کے لیے بھی ایسا ہی بھاؤ, سکھ دکھ میں گھبرانا نہیں چاہیے, مرتو آ رہی ہے کچھ انہوں نے آگاہ نہیں ہو سکتی. ایسے آپ لوگ بھی جو بھگوان کا بھجن کرنا چاہتے ہیں ایسے رہنا چاہیے, ہاتھ جوڑ کر کے ان سے کھانا مانگی دیوی بھکتوں سے بھی کھانا مانگتی ہے اور مانگ کر کے پتاجی پربھو اب اپنے سوروپ کو تو ٹھیک رکھیے, کتنے لوگ اپرادھ میں مریں گے, ہاتھ جوڑ کر کے ان کو بھی جائے. اس کے بعد یہ چلے آئے تھے وہیں پر میڈ پر بیٹھے تھے کچھ دن اور گئے, سب دیش کا راجا ہو گئے, وہ کبھی دیوی کے آسن میں جا رہا تھا آتم گیان کے سب سے شریش اپاسنا کس کی ہے اور وہ اپاسنا کیسے کی جاتی ہے. اپاسنا مانا تو اوپ آسن اپمانے نکٹ میں آسن جہاں پر بھگوان ہے وہاں پر بیٹھنے کا نام ان کی سیوا کرنے کا نام ایک روپ میں اس کا نام ہے اپاسنا. بیٹھے ہوئے سبھی وہ جا رہے تھے چار کاموں میں سے ایک بار کر گیا پارٹی بند ہو گئی, آج خود لاؤ کسی کو ڈھونڈ لاؤ بیگار میں راجا کو بھیجتا ہوں بیگار میں بنا اس کو پیسے کیے کام کرا رہا ہے اس کا نام ہے بیگار, کسی کو پکڑ لاؤ دیکھا جائے سنت بیٹھے ہوئے ہیں کوئی چنتا نہیں چھوٹے چھوٹے نو ہوا کبھی بس ان کو پکڑ دیا اور لے کر کے پارٹی میں لگا دیا پارٹی میں لگا رہے تو پارٹی میں لگ گئے کوئی بھی چنتا نہیں کر رہے ہیں پرارتھ کے پک میں جو کچھ آ رہا ہے اس کو بھوگ رہے ہیں کہ ایسے ہی بھکتوں کو بھی چاہیے تم لوگ بھی ایسے ہی سوچو شری کرشن جات بھی سو رہے ہیں کوئی اور سو رہے ہیں ہم کھڑا کر دیں گے ان کو اٹھاؤ تو کوئی بیٹھے کوئی گا کر اٹھا دیں گے تنگ کر کے بیٹھیے ہم جیسے میرے برہمچاری ہیں کہ گرہ سے گرہ کو بیٹھے کیسے سن رہے ہیں تھوڑی سی لجا نہیں چاہیے, سب تن کر کے سنو, سننے کے لیے آئے گا. یہی تو پرماتما اور سب کا جان ہے, کسی کو سننے کی ضرورت ہے. ہم تو سمجھتے ہیں کہ ابھی دیر میں مسئلہ جیسے تو نہیں ہے, جن کو ہم دیکھتے ہیں کہ تھکے ہوئے لوگ بس تھل روپ بیٹھے ہیں, اس لیے یہ تو بتلا رہا میں تو نہیں بتلا رہا, یہ دل میں بتلانے کی چیز نہیں ہے. آپ لوگ اس کو خوب دھیان کے ساتھ میں سمجھتا ہے, کسی کا نام نہیں سب. میں سوچتا ہوں کہ بہت اچھے اچھے آدمی بیٹھے ہوئے ہیں سوتا ہی, تو وہ جا رہا ہے کپل دیو جی کے آسرم میں اس تتو گیان کو سننے کے لیے. جگت میں آرادھ کون ہے اور اس کی آرادھنا کیسے ہوتی ہے, اس کی اپاسنا کرتے ہیں. تتو گیان سبق تتو گیان کس کو کہتے ہیں, آتم گیان کس کو کہتے ہیں, ادھیاتم گیان کس کو کہتے ہیں, یہ سب جاننے کے لیے جا رہا ہے. بہت بڑے بڑے رشی مہرشیوں کا سادھوؤں کا سنگ کیا تھا, اس لیے وہ سادھو سنگ کے لیے جا رہا تھا, کنتو ابھی راجک سامسک اور ساتوک بھاؤ گئے نہیں ہیں. میں راجا ہوں, میں یہ شریر ہوں, ابھی تک یہ بھاؤ نہیں گیا ہے. جیسے ہم لوگوں میں بھی بہت سے برسوں سے ایک دور ہو گیا, 12 برس سے جیت گیا تو ابھی دیہ کا ابھیمان نہیں جاتا, میں چھتری ہوں, میں براہمن ہوں, میں بنیا ہوں, میں ایسا ہوں, میں بہت دھنی ہوں, ابھیمان نہیں جاتا. اس لیے وہ تتو گیان سنے ہیں, رشی مہاتماؤں کے بھی پاس گئے ہیں, کنتو ابھی پورا نہیں ہوا ہے, اس لیے وہ جا رہے ہیں. دیکھا تو ایک پالتو والا بیمار پڑ گیا, بیگاروں کو لے آؤ, ان کو پکڑ دیا اور لگا دیا. یہ ایک دھن میں نے قریب قریب 4 آگے دیکھ کر کے چلتے تھے, جیسے کیڑے موکڑے کی تھی سیما اتیادی تک جو ہے پیر پن کے نہ پڑ جائیں, مشکل نہ ہو جائے. اہنسا کا اتنا بھاؤ نہیں چلتا, جب وہ ایسا چلتے تو ان سے پیر نہیں ملتا, پر نہیں ملتے تھے, وہ پالکی ہلنے لگ جاتی. تو راجا نے کہا جی متر سخا سکے, بہت دنوں تک آپ نے کچھ کھایا نہیں, بال بہت دبلے پتلے ہو گئے ہیں, ہمیں تو ایسا ٹھیک ہوتا ہے. یہ تینوں آدمی کچھ نہیں کر رہے, آپ اکیلے ہی بھار کو اٹھا لے کر کے چل رہے ہیں, اور آپ کو آپ سے بھی ابھی دکھ جائے ہے, اس لیے بڑے سیدھے سے چل رہے ہیں. ایسے ہی تانا مارا, تو کیا جیسے تانا مارنے سے یہ سمجھ جائے گا, تانے مارنے سے وہ جیسے چل رہے تھے اپمان اپمان کا, کوئی بول نہیں. پڑھنے کے بعد میں سارے ارے تم لوگ ٹھیک سے کیوں نہیں چلتا, ابھی دنڈ تو دوں گا. کہاں بولے جی ہمارا دوست نہیں ہے مہاراج, یہ نیا آدمی پیر ملا کر کے نہیں چل پاتا ہے, ادھر ادھر کرتا ہے. انہوں نے کہا جب ٹھیک تھا, ایک ایسن سر سے دوسرے بھی خراب ہو جاتے ہیں, ایک ایسن سر سے یہ تینوں خراب ہو رہے ہیں, اس لیے ایک کو دنڈ دینا ہمارا کرتویہ ہے, کیونکہ میں راجا ہوں. راجا نے تو سنتا نہیں, ٹھیک سے چلتا نہیں, مارگ سوجتا نہیں ہے, دبلا پتلا بھی تو نہیں, بڑا بھی پوچھتا ہے. دیکھو میں راجا ہوں, تمہیں ابھی دنڈ دیتا ہوں, میں تو ٹھیک سے ساودھان ہو کر کے چلوں, میں تمہیں اچھی طرح سے شکشا دے دوں گا, علاج کرا دوں گا تمہارا. یہ کہہ کر کے وہ روز سے پھر گئے. ان کو دیا ہے, کون سے ساتھ سمجھنے کا سنگ کیا ہے, تو خوشی بھی اس کی ہے, ہماری باتوں کو کچھ سمجھ نہیں سکتا ہے. جسے آسمان میں پہلی بار جہاں ہوش میں آ کر کے اپنا پریچے دیکھتے ہوئے بولا, بولے جب بھاگ ہے تو دھونے کے لیے نہیں, اس سے کوئی چنتا کی بات نہیں, اور جب مارک ہے تو وہ چلنے کے لیے ہی ہے, اور جب دبلا اور پتلا کا جو ابھیمان ہے اس مٹی میں تو آتما میں تو ہے نہیں, کس اپاسی کا روپ ہے. تو یہ تم میں ہے, ہم کو تو یہ دیکھ جانا ہے, یہ تمہیں میں موٹاپن ہے اور اپادیاں ہیں, اور تم ہی اپنے کو راجا سمجھتے ہو, دوسروں کو پرجا سمجھتے ہو. جبھی آپ راجا ہیں اور میں پرجا ہوں تو یہ ویوہار بھی, کھیت ویوہار بھی, ویوہارک جو ہے इवन के तौर से चलता है, ठीक है, किंतु मुझको तो आप प्रजा हैं, मैं प्रजा हूँ, आप राजा हैं, ये सब मुझको आत्मा में ये दिखता नहीं है, मैं तो इसे एकदम संपूर्ण अलग हूं। तो पीछे हुए को पीस करके क्या होगा, और हमारा इलाज करा दो, हमारा तुम क्या इलाज कराओ, न मैं शरीर हूं, न मैं दुबला हूं, न पतला हूं, न भाग होने वाला हूं, न कुछ भी, मैं जैसे सब था एकदम गे। या सुन करके अद्भुत, तो ये कपिल देव जी के आश्रम में जा रहा था, वही तो नहीं, ये तो बड़ी ज्ञान की बातें करे, तत्व ज्ञान, यही तो मैं समझने जा रहा, इन्होंने जो कहा मेरी समझ में आया है, मुझे इन्होंने क्या कहा, बस पासे से उतर पड़ा और प्रस्ताव में उनको प्रणाम करके, अरे महाराज आप कौन है, पहले परिचय से दीजिए, आप कपिल देव तो नहीं है, या दत्तात्रेय के संबंध में सुना है, नंग धड़ंग होकर के चलते हैं, जहां पर जो कुछ मिल जाता है खा लेता है, मानस मानता वो, आप वही दत्तात्रेय हो गए, अथवा सनकंदन सनक कुमार से क्या है तुम्हें, इनको आपकी बातें मैं समझता था, मैं बहुत बुद्धिमान हूं, सबको ज्ञान जानता हूं, किंतु आपकी एक बात भी मेरी समझ में नहीं आई, मैं इसी के लिए जा रहा था। मैंने कहा जो भक्ति का नाम सुना है, अरे वो हमारे पुरुष थे, उनको विश्वमान में कौन नहीं जाता, मैं वही भक्त था, राजा समस्त विश्व का, युवावस्था में संसार छोड़ करके आया, मैं वही भक्त हूं, और उनकी श्रद्धा हो गई, कितने तत्वज्ञानी भगवत भक्त उनके चरण में हो गए, प्रभु आपकी बातों को जरा सहज रूप में समझा लीजिए, यदि एक आदमी चलता है, मैं युद्ध में जाता और कोई परिश्रम करता हूं, हमारा शरीर थक जाता है, पसीने आ जाता, आदमी चलता है तो थक नहीं जाता, तो मैंने समझा जैसे जैसे मैं थक जाता हूं, तो पाल के देने से आप भी थक गए होंगे, और मैं देखता हूं कि आज दुबला हो गया और कुछ दिनों के बाद में जरा मोटा हो गया, तो मैं समझता हूं कि आप भी वैसे मोटे और पतले या दुबले हैं। दूसरी बात, आपने ये जो कहा कि आत्मा निर्लेप है, संसार से हमारा इलाज करने से कोई लाभ नहीं, मार्ग चलने के लिए है और श्रम भी करना है तो है भाग होने के लिए, ये मेरे दिमाग में नहीं आ रहा था, अब और समझा बता सकते, हमारी बुद्धि भूल है, अब मैं समझा, अब तक तो कहीं नहीं समझता था, किंतु अब समझ गया, हमारी बुद्धि अब अपना, देखिए आत्मा निर्लेप है आपने कहा, किंतु मेरी समझ में नहीं आया, क्यों नहीं आया, आग जला दी, उस पर बटलोई रख दिया, उसमें पानी दे दी, पानी गर्म हो गया, खौने लगा, उसमें चावल दे दो, चावल क्या होगा, चना सिद्ध हो जाएगा उसमें, तो इसमें आत्मा भी यदि कोई चीज है तो शरीर के ताप से वो भी गर्म होगा, यदि शरीर को मान अपमान होगा तो आत्मा को भी उसी प्रकार से दुख होगा, यह दुख किसको होता है, किसी ने अपमान कर दिया है, ये किसको होता है, मैं दरिद्र हो गया ये कौन समझता है, शरीर समझता है, शरीर को समझता नहीं, शरीर से तो होता है, किंतु ये मन में जाता है, मन से आत्मा को जरूर से संपर्क होने से आत्मा को भी ऐसा लगता होगा, मैं दुखी हूं, मैं दुखी हूं, ये आपका मैं जैसा कोई संबंध नहीं, हमारा इलाज क्या करेंगे। दूसरी बात, मैं राजा हूं तो ये दंड देना भी इस पेशन के समान क्यों, इसे पेशन आता, इसके द्वारा कोई भी लाभ नहीं है, एक आदमी बुरे मार्ग से चल रहा है, मैंने उसे दंड देकर के सुपथ में ला दिया, उसको भगवान की भक्ति में ला दिया, तो ये दंड देना ठीक नहीं है क्या, ये बेकार हुआ, ये भी मेरी समझ में नहीं आता, आपने ऐसा नहीं कहा, ये सुख दुख किसको होता है, आत्मा को होना, शरीर को होना, मन को, अभी तक मेरे समझ में नहीं आता, किसको होता है, विष्णु जी किसको होता है, आत्मा को होता है, शरीर को होता है, मन को होता है, किसको होता है, अभी समझ करके भी हम लोग नहीं समझ पा रहे। तब उन्होंने कहा, देखो भक्त जी बोले, ये सब देह की उपाधियां हैं, आत्मा की उपाधियां हैं, एक आदमी मर रहा है, उसको तो कुछ पूछा नहीं, उठाया नहीं, और पति मर रहे हैं तो क्या करेगी, या इसलिए मर रही है तो पति क्या करेगा? ये पति और पत्नी का संबंध जो ये मन का संबंध है, आत्मा का साथ में इसका कोई भी संपर्क नहीं है। इसलिए जब तक इसका संबंध है देहात मुझिमान है, तभी तक ये सब चीजें हैं, मेरे से ये है ही नहीं है। ये सुख दुख किसको है? शरीर से मालूम होता है किंतु शरीर से नहीं। आदमी मर जाए उसको काटे तो उसको कटने का दुख होगा? नहीं होगा। जब तक आत्मा है तब तक उसमें कुछ क्षण के लिए मन भी है। मन से आत्मा नहीं रहने से मन नहीं रहेगा, किंतु बिना आत्मा के मन भी नहीं रहेगा। ये भी समझो, भगवान के बिना जगत नहीं होगा। ये बात तो ठीक है, जगत कहां हुआ भगवान से, किंतु जगत नहीं रहने से भगवान नहीं रहेगा, ऐसी बात नहीं। जगत के नहीं रहने पर भी भगवान रहेगा। इसी प्रकार से शरीर और मन नहीं रहने से भी आत्मा रहेगी, इस चीज को समझो। किंतु अभी हमने अपना भूल करके अपने को, मैं ये समझ रहा हूं कि मैं ही या शरीर हूं, ये संबंध हो गया। इसलिए शरीर से संबंध से भोगे जाने वाले जितने भी अच्छे सुख और दुख हैं, ये सब क्या है, ये मालूम होता है नहीं आत्मा को पढ़ा। जिस समय यह संबंध छोड़ देंगे, काट देंगे, उस समय में यह सुख दुख खड़ा रह जाएगा और आत्मा से भगवत चिंतन होकर के भगवान के सेवा, ये उपासना है। भगवान का जीव नित्य दास अंग है, अंग के असल में कहो तो ये बंधन है ही नहीं है। मुक्त पुरुष देखते हैं कि किसी को कोई बंधन नहीं, देहात्माभिमान के द्वारा वो अपने आप बता हुआ है, किसी ने बांध नहीं रखा, माया ने बांधा नहीं, हम भी उसको बांधा। जैसे एक उदाहरण से समझिए, एक लड़का खील कर खरीदने के लिए, खील मैंने कोई होती है चाउल को धान को भूनने से फटूजे से वो खिल जाता है ना, तो वो उसकी जरूरत थी, पेट में कोई गड़बड़ी थी, वो गया खरीदने के लिए, या पूजा के धान में भी लगती है, कोई पात्र नहीं ले गया, उसको एक पौवा की जरूरत थी 250, तो उसने कहा वो खंभे में के पास में बैठा था, एक खंभे को इधर से और एक खंभा बीच में, और वो दोनों हाथ से वो ले लिया बालक, समझ रहे हैं, ऐसे ले लिया। अब वो पैसे देकर के चल रहा है, अब वो आए कैसे, जब वो छोड़ता है तो कभी गिर जाएगा, और यदि नहीं छोड़ता है तो वहां अब उसको कौन किसने बांधा है, अपने आप को बांधा, ऐसे माया ने हमको बांधा नहीं, हम अपने आप माया में बंधे हैं। इस चीज को समझिए, मैंने नहीं कहा कि तुम आसक्त हो जाओ, किंतु हम आसक्ति हो गए तो वो माया क्या करेगी, भगवान भी बड़े दयालु, वो भी नहीं माया पर छोड़ते हैं, तुम जाओ सबसे बस को बांधो, उनको क्या जरूरत पड़ती है, किंतु बंध जाए तो क्या। इसलिए इस चीज को समझना चाहिए, मुक्त पुरुष बंधन देखते ही वो चेतन है ना, वो चेतनता का ही प्रयोग करता है, दुष्प्रयोग करता है, तो ये माया के बंधन करता है। अभी क्या खोल दो, प्रसिद्ध जैसे खोल दिया ना, ऐसे खोल दो, हमारा इस संसार से कोई मतलब नहीं, छोड़ दो ना, बैठ के सब तो हो जाएगा, छोड़ दो, छूट नहीं, और भी अधिक अभी बंधन अधिक हो जाता है जितना चेष्टा करते हैं। जैसे दलदल में कोई व्यक्ति फंस गया ना, निकलने की चेष्टा करता है और दलदल में और फंसता जाता है, और फिर कभी और कोई आएगा तो फेंक लेगा, तो और चेष्टा करेगा, एक पैर को लगाएगा, एक पैर और निकालो तो फंसता करा, एकदम पूरा। ये दलदल के समान ही माया है, अपने आप नहीं छूटेगी जब तक कि मुक्त पुरुषों की और भगवान की कृपा नहीं। ये पक्ष निकालो का क्या कहा है, उन्होंने कहा कि देखो रहु गणित तक तपसा में जाती न से इस जाय निर्वाद वरणाद विकार कवा लक्षण दशा नहीं तो जलाग्नि सूर्यो बिना महत् पद रोज बिना महापुरुषों के चरण रज की सेवा से उनके चरणों की रज से अभिषिक्त हुए बिना कभी माया नहीं छूटेगी। और ये संबंध हम पढ़ते हैं, इसलिए महापुरुष लोग जल की, जैसे साधारण आदमी जल की पूजा करता है, अग्नि की पूजा करता है, इनसे भी नहीं होगा। वेदों के द्वारा वेद मंत्र का उच्चारण करने से भी नहीं होगा, देवताओं की पूजा करने से भी नहीं होगा, उनके अभी भी बात ही नहीं है। मुक्ति देने वाले कौन है? मुकुंद है एकमात्र, ये लोग और माया में फंसा देंगे। इसलिए बुद्धिमान पुरुष ये चरणा कर करके माया से मुक्त जो महापुरुष हैं उनकी चरण में चरण ग्रहण करते हैं, उनके चरणों के द्वारा सिक्त होते हैं और दूसरों की पूजा के द्वारा नहीं होगा। आजकल नई नई देवियां भी हो रही हैं, विशेष करके स्त्रियों को आकृष्ट करती हैं, सुनते स्त्री मैया हैं, न जाने कितनी मोचित मैया है, कहां कहां देवियां, कितने देवता, कितने जगत में ये सब सोहमी सोहम इत्यादि भक्ति के देव की बात। सबको आदर करो, सम्मान दो, क्योंकि कृष्ण भी उनमें है, किंतु आराध्य हमारे एक होंगे। इस प्रकार से उनको उपदेश दिया और उपदेश जाने के साथ ही उनके चरण में और एकदम भक्ति से भर गए, उनको भक्ति की, इस प्रकार से उनको गुरु मान लिया भक्ति और अपना जीवन सुधार। इसी प्रकार से उस उपाख्यान के द्वारा हम लोग भी आचार्य करेंगे, कृष्ण को ही, राजा जी को ही अपना आराध्य मान करके उनकी सेवा करेंगे, उनकी उपासना करेंगे और शरीर के अभिमान को धीरे 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 जो भोग हमारा कर्म फल है उसका भोग करेंगे, अथवा भगवान की कृपा से जैसा वो कर रहे हैं वैसा हम उसको खुश कर रहे हैं, ये भगवान की कृपा से ऐसा होगा। सत्य इनकम काम सुंदर स्थान कुंजान के बाद मतम विपाकम सिद्धवा बुद्धि विधन नमस्ते जीतम दायका मुक्ति पदे जलाएगा। अपने दुखों को और सुखों को दो रूपों में लेना चाहिए, या तो अपने कर्म फल हैं इनको भोगना पड़ेगा, जो हंस करके भोगो रो करके भोगो, हंस करके क्यों नहीं भोगे जब भोगना ही है और भगवान का भजन करें, अथवा इसको भी सुख में मानो, भगवान ने भगवान का नाम करने से भक्ति करने से हमारे कर्म फल खत्म हो गए हैं, किंतु आप जो देखे जा रहे हैं ये किस लिए, ये भगवान ने कृपा करके हमारे शरीर को रख करके भजन कराने के लिए कृपा करके हमारा कर्म फल जैसा एक दे रखा है ना, ऐसा समझ कर महापुरुषों के लिए ऐसा समझना चाहिए। उनका कोई कर्म फल नहीं है चित्रकेतु महाराज के या हमारे गुरु जी के, महापुरुषों के कर्म फल नहीं होते हैं। आंख खोल करके सुनो भाई, आंख खोल करके तभी सुनो, आंख बंद मत करो, आंख बिना बंद किए हुए खोल करके देखो, तत्व ज्ञान है, इसको दिव्य दृष्टि कहते हैं, नहीं तो आंख बंद कर देगा दिव्य दृष्टि नहीं को। भगवत भक्ति में आंख बंद मत करो, हरि बोलो, खूब प्रसाद पाओ और सुख
करो,
भगवत भक्ति में ये सब नहीं करना है। भगवत भक्ति बड़ी सीधी सरल चीज है, ध्यान समाधि की भी जरूरत नहीं है। गोपियां सब समय समाधि में रहती हैं, चलती फिरती हैं किंतु समाधि में, कहां पैर रखना है कहां वो नहीं जानती, और चल रही है बातचीत कर रही है श्रृंगार कर रही है, यह है सहज समाधि। भक्ति भी ऐसी सहज समाधि, ध्यान लगाने को तो जो भगवान का विदास भगवान का नाम कर रहे हैं यही भगवत दर्शन है, ऐसा समझो। इस भक्त महाराज ने उनको दिव्य ज्ञान दिए, उसको ग्रहण करके कृपा हो गए और उसको राजा का और फर्क भी अपने से लौट गए। इस तरह से यही उनका अंतिम नियम था, थोड़े से पैर से चल जाने से तीन जन्म में उनको आना पड़ा, किंतु जगत के कल्याण के लिए उनका, नहीं तो ये ज्ञान कहां से आता भागवत में, इसलिए अब आगे की कथा श्रीमान शुभानंद जी आप उनको बताए। बहुत ध्यान से सुनिए, बहुत सौभाग्य की बात है कि ये सब बातें हम लोग सुन रहे हैं, सब जब हमें ये नहीं बतलाएंगे वो तो रोचक दो एक बातें कहेंगे।
अपने
Thank you.